اب خواب کی تعبیر، یہ ہے خوبصورت کردار، یا صاحب یا سجن، اے زندان کے ساتھی ہو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہوگا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے، پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، یعنی اسباب استعمال کیے کہ جاؤ گے تو ذرا بادشاہ کو بتانا تمہارے ملک کی جیل میں ایک بے گناہ شخص پڑا ہوا ہے، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے بادشاہ کے سامنے اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اور یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ یوسف قید خانے میں کئی سال پڑے رہے۔ فلبی صفح سچ نبیدا سنین، یا پھر رکیے، تقدیر تدبیر پہ غالب آ گئی۔ یوسف نے تدبیر کی کہ چلو بھائی جا رہے ہو، ذرا بادشاہ کو کہہ دینا تمہارے جیل میں ایک بے گناہ پڑا ہوا ہے، تو میرا ذکر کرے، ذرا میری فائلیں کھول لے، دیکھے میں جھوٹا میرا سچا مقدمہ، مجھے نکال دے۔ کوئی حرج نہیں تھا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، اسباب اختیار کیے تھے، لیکن اللہ نے ابھی یوسف کو کچھ اور سکھانا تھا، ابھی محسن بنانا تھا، ابھی آگے پھر ایک ایسا واقعہ آنا تھا کہ اس مرد کو پھر یوسف کی ضرورت پڑنی تھی، شیطان نے بھلوا دیا۔ حدیث میں ہے کہ بھول شیطان کی طرف سے، بعض دفعہ نماز بھلوا دیتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کئی بڑے بڑے کاموں کے دعوے کر چکے تھے بھول جاتے ہیں، کئی زندگی میں سے واقعات میں نے خود دیکھے، کئی لوگ نیکی کی نیت کرتے ہیں، آ کے کہہ جاتے ہیں یہ کام ہم نے کر دیا، یہ نیکی میں کروں گا، یہ صدقہ دوں گا، یہ میں وقف کر دوں گا، بعد میں بھول جاتے ہیں۔ تو جب کبھی ایسی بھول آئے تو اس کے اوپر کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے سورت کہف میں ہم پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بھلا دیا، آگے ہی چلے گئے، تو شیطان کا یہ بھول کا بار ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جیل میں کیوں نہ ڈال دیے جائیں، آپ کی خوبی کھل کے آتی ہے۔ جیل کے قیدی آپ کو محسن کہتے ہیں، اور ساری صورت میں آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا کردار ایک محسن کا ہے، پہلے بھائیوں کے ساتھ محسن، پھر اس عزیز مصر کے گھر میں محسن، اور اب جیل میں آ کر بھی محسن بن رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے اوپر نظر رکھی اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں اللہ نے رکھنا تھا، وہ رہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو تکلیف آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے، کٹتی تب ہے جب رب جاتا ہے۔ شور مچائیں، چیخیں، تڑپیں، رو رو کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے اپنی اولاد کی دعائیں مانگیں، جو غم آنا ہے ان کو وہ آ کے رہنا ہے، جو تکلیف آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے، کیونکہ اللہم اللہ مانی علی ما آتیت ولا موتی علی ما منات۔ تو راضی رہیے، خوش رہیے، جو میرے رب نے میرے ساتھ کیا وہ اچھا ہی کیا ہوگا، پتہ نہیں اس جیل کے بعد کون سا تاج رکھا ہوا، بس آپ اس کے اوپر راضی رہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ تلخیوں کے دن، وہ مشکلوں کے دن آپ کے لیے پھولوں کی سیج بن جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں زندگی میں مشکل نہ آئے پھر بندہ خوش ہوتا ہے، نہیں، مشکل آئے اور آپ اللہ پہ راضی رہے، وہ دن خوبصورت دن ہوتے ہیں۔ ہمارا حال ہے ساری نعمتیں مل جاتی پھر نہیں خوش، اگر ایک بچی سسرال سے گھر بھیج دی گئی وہ تو دکھی ہے، جو سسرال میں بیٹھی ہے جس کے لاڈ دے کے جا رہے ہیں وہ بھی دکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے وہ کیوں نہیں، اس لیے میں دکھی ہوں۔ تو یاد رکھیے، تقدیر سے لڑیے نہیں، تقدیر کو سامنے رکھیے۔ وقت گزر گیا، یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں ڈال دیے گئے۔ اب آگے ایک اور وقت ہوا، دوبارہ یوسف کی ضرورت پڑی ان کو، کیسے؟ وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان، ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی سات بالیاں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی، اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان دو قیدیوں میں سے جو ایک بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اور اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس تو بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف ہے سراپے راستی، اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا، یوسف کو کتنے سال بعد ملے، اور شخص بھی وہ ہے جس کو یوسف علیہ السلام نے ایک کام کہا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے جا کر اس نے بغیر کسی معذرت کے، ایکسکیوز کے، سوری کے، جا کے کیا کہا، یحسدی کو افتینا فی سبی بکرات، یعنی اپنے مزاج کی بات پہ آ گیا، ویری فرینک، ویری آنریبل، یعنی سیدھا سیدھا سٹریٹ فارورڈ ہے۔ یوسف آگے سے کیا کہتے، ٹھہرو، پہلے مجھے تو بتاؤ، آ گئی میری ضرورت، آ گیا میرا خیال، ایک کام ہی کہا تھا نا تمہیں، نہیں، ان لنراک من المحسنین، मोहसिन ताने नहीं देते। मोहसिन ये नहीं जतलाते कि पिछली जिंदगी में तुमने मेरे साथ क्या किया, बल्कि क्या कहा सुनिएगा अब इसको। वो शख्स बोला, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता दो। सात मोटी गायें हैं, इनको सात दुबली गायें खा रही हैं, और सात बालियां हरी हैं और सात सूखी हैं। शायद के मैं इन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद के वो जान लें। यूसुफ ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे। इस दौरान में जो फसलें तुम काटो, इनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकालो, और बाकी को इसकी बालों में रहने दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे। इस जमाने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो इस वक्त के लिए तुम जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने महफूज कर रखा होगा। इसके बाद फिर एक साल ऐसा आएगा जिसमें बाराने रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे। ना सिर्फ ये कि ख्वाब की ताबीर बताई, तदबीर भी बता दी। ये होते हैं मुहसिन। जितनी बात किसी ने बताई उतनी पे नहीं रहे, बल्कि उससे थोड़ा सा आगे भी चल पड़े। बाज लोग इतने कंजूस और इतने स्टिंजी होते हैं, कोई बात बताए बात भी ठीक नहीं बतानी। मतलब कोई औरत है, उससे कोई रेसिपी पूछे, ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं, खत्म। कुछ होते हैं उसको और अच्छा, नहीं ऐसे कीजिएगा। तो याद रखिए कि मोहसिन जो होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों को देना चाहते हैं। इतनी खूबसूरत ताबीर जब बताई, बादशाह के पास गया, बादशाह को जाके ताबीर बताई। अब बादशाह बेचारे का भी हाल देखिए, उसके अपने इर्द गिर्द के जो दरबारी थे उन्होंने तो कह दिया, ये अदखासुल अखलाम है, ये ऐसी बेतुकी बातें हैं। अब जिसने ख्वाब देखा होता है वो तो जरूर कोई ताबीर चाहता है, बल्कि मैंने देखा लोगों का दिल होता है कि ताबीर ऐसी हो जो हम सोच रहे हैं। अब आप कहते नहीं 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 ये कोई ख्वाब की ताबीर नहीं, जाइए सदका दे दे, लोग नाराज हो जाते हैं, कहते नहीं कुछ है। अब उसने तो ये कहा, उन्होंने ये कहा, लेकिन यूसुफ ने जो ताबीर बताई, बादशाह का दिल नहीं खुश हुआ। यूसुफ कहाँ बैठे हैं इस वक्त, जेल की कैद में, तन्हाई में, बादशाह किधर है, तख्त पे, बादशाह का स्टेटस और यूसुफ एक कैदी। कैदी को क्या समझते हैं आप और मैं, हमेशा क्रिमिनली का जहन में आता है। लेकिन जरा देखिए, ये है गॉड ऑफ ऑनर, रेडिटेबिलिटी, कि अगर आप में कोई खूबी है आपको लोग घर से भी निकाल लाएंगे कि आप मेरी जरूरत है, आप आइए। और अगर आप में कोई खूबी नहीं, आप 10 बातें लोगों से कहें, अगला कहेगा इट्स ओके, बहुत अच्छा आपसे बात करेंगे। यही बात इधर यूसुफ के बारे में दिख रही है। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। दुआ कीजिए आज के मुसलमानों के लिए भी यही जुमले बोले जाएं। ये कब होगा, जब हम एक्टिव होंगे। देखिए मैं अक्सर कहती हूँ, ये मेरा एक पैशन है, मैं कहती हूँ वेस्ट में रहने का, मैं ये हक अदा करना चाहती हूँ कि आप दुनिया के किसी मुल्क में रहें, अमेरिका, कनाडा, चाइना, खूबसूरत मुल्क हैं दुनिया के, पूरा यूरोप भरा हुआ है, आप अपने अंदर खूबियां भर के लाएं। इधर आपको बुलाएंगे, अभी देखिएगा, अब ये सारा दौर जो चलेगा कि यूसुफ में खूबी थी तो कैद पे से निकाल कर बादशाह उनको अब कहां पेश कर रहा है। अगर मेरे आप में खूबी है ना, तो यकीन करें दुनिया में कोई हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा करे, कोई हमारे खिलाफ 10 बातें करें, जब लोग आपसे मिलेंगे कहेंगे, नहीं हमें आप अच्छे ही लोग लगते हैं, यू आर गुड पर्सन, कम ऑन, हम तुम्हें हायर करेंगे। लेकिन 400 बीसियां, धोखे, कहना कुछ करना कुछ, दिखाना कुछ भेजना कुछ होगा, तो ऐसे मुसलमान तो फिर इस्लाम के नाम पे एक धब्बा है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। मगर जब शाही फरस्तादा यानी बादशाह का भेजा हुआ शख्स यूसुफ के पास पहुंचा तो इसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और इससे पूछ के इन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, मेरा रब तो इनकी मक्कारी से वाकिफ ही है। सब्र तो देखिए, 7 साल की कैद, हम मोते जूती पहन के बाहर खड़े होते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लम ने हजरत यूसुफ को इज्जत देने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए फरमाया, अगर मैं यूसुफ की जगह होता तो बादशाह के एलची के साथ फौरन चल पड़ता, पर यूसुफ ने कहा, सॉरी आई विल नॉट गो। बड़ी अहम बात है इसमें, बादशाह ने बुलाया चले जाते, कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, पहले जाकर मेरी बेगुनाही साबित करो। वजह अब यहां समझिएगा, बड़ी अहम बात है। अल्लाह ने यूसुफ से दीन का काम लेना था। मिस्र उस वक्त का एक नॉन मुस्लिम मुल्क था, आज मुस्लिम है। बहुत दिलचस्प हिस्ट्री है जो मैं इस वक्त नहीं बयान कर सकूंगी, लेकिन इशारे दूंगी। यूसुफ के जरिए से मिस्र का इक्तदार पलटने वाला था। ये ऐसे ही जैसे आज के दौर का कोई नॉन मुस्लिम मुल्क में कन्वर्ट हो। यूसुफ ने चूंकि दीन का काम करना था, उनकी जात पे धब्बे लगे हुए हैं। अगर बिलफर्ज जेल से आया, पता नहीं ऐसे बादशाह ने कर्टसी में उसको बुला लिया, तो यूसुफ के कैरियर पर यह बात नुकसानदेह साबित होती। हाँ, बेगुनाह साबित होंगे दीन के लिए, अल्लाह के इस्लाम के लिए, और वहां जाकर अल्लाह का पैगाम देने में उनको कोई रुकावट नहीं होगी। ये बात थी का मैं नहीं जाता, जाओ बात करो। और दूसरी बात देखिए, औरतों के बारे में क्या कह रहे हैं, वो जो मेरे पे डोरे डाल रही थी, वो जिनकी वजह से मैं 7 साल रहा, साथ रोते जाते, साथ आंसू पोंछते, नहीं जिन्होंने हाथ काट लिए थे, पता नहीं क्यों काटे थे, प्याज काटते हुए हाथ कट गया, यानी उनके जुर्म को छुपाया और उनकी हालत, उनकी बेबसी को जाहिर किया। ये है इन्ना लनराक मिनल मुहसिनी, अपने ऊपर लीजिए। हम जब दुख सुख के नाम पे कहानियां सुनाते हैं, साबित करके उठते हैं कि मेरा शौहर दुनिया का जालिम तरीन शौहर, मेरी सास सबसे नकदरी औरत दुनिया की, मेरी नंदे खौफनाक किस्म की औरतें, यानी मुझे मेरी माँ ने किसी घर में नहीं किसी जंगल में भेज दिया जहाँ होनहार किस्म के लोग रहते हैं। बास लोग अपने ससुराल का ऐसा पोर्ट्रेट करते हैं, मैं सोचती हूँ और मैं उनको कहती नहीं, दिल में सोचती हूँ फिर क्या देख कर दिया था आपकी अम्मा ने आपको, कुछ सताया ही बहुत होगा आपने जिसको माँ ने कहा जो भेजो इसको ऐसे दरिंदों के हाथ में। क्या अकल नहीं थी, क्या समझ नहीं थी? लेकिन सिर्फ ये नेगेटिविटी है, एहसान नहीं औरतों में, शुक्रगुजारी नहीं औरतों में। अच्छे लोगों को बुरा बना लेती हैं, बुरे तो चले अल्लाह ना किसी के बस में डाले, तो हजरत यूसुफ ने जाने से इनकार कर दिया। और यहाँ याद रखिए, मुझे हजरत इमाम बुखारी का वाक्य हमेशा याद आता है। एक सफर में थे, पास 1,000 अशरफियां थी, और अशरफी गोल्ड कॉइन होता था अपने दौर का, सफर का खर्च था। जब सवारी पे बैठे कश्ती पे, तो साथ बैठे शख्स से बातों में जिक्र कर दिया कि ज्यादा सफर है और पैसे लेके आया हूँ। कश्ती चल पड़ी, थोड़ा सा आगे गए तो वो जो शख्स आता था उसकी नीयत खराब हो गई, खड़ा हुआ और एकदम शोर मचा दिया, लोगों मेरे पास 1,000 अशरफियां थी, लोगों लोगों पता नहीं किधर गई। अब एकदम क्योस पे पड़ गया, चलो भाई रुक जाओ, कहाँ जानी है, इधर ही होगी, तलाशी लेते हैं, जिसके बस निकलेगी होगी। और उस शख्स ने चाल ही चली कि जब इमाम बुखारी के बस निकलेगी तो किसी को क्या पता कि इमाम बुखारी के लोग कहेंगे मेरी है तो मुझे मिल जाएगी। तलाशी शुरू हो गई, सबकी ले ली ले ली ले ली, इमाम बुखारी पे बात आ गई, तलाशी ले लो, कुछ ना मिला। पूरी कश्ती में अशरफियों का नाम निशान नहीं, कहा बैठ जाओ आराम से, कोई नहीं है तेरी घर छोड़ आया होगा, चुपके से बैठ गया, खामोश हो गई, बात चली गई, सफर खत्म हुआ, जिंदगी का कुछ दौर गुजरा। एक बार फिर वही शख्स इमाम बुखारी के सामने है, कहने लगा एक बात तो बताएं, जब आपके पास 1,000 अशरफियां थी ही नहीं तो आपने मुझे क्यों कहा? ठीक है मैं मानता हूं मेरी नीयत बिगड़ गई थी, मैंने झूठ बोला था, बट आपने क्यों झूठ बोला? कहा मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे पास अशरफियां थी। कहा फिर तलाशी में निकली क्यों नहीं? कहा जब तेरी नीयत खराब हुई और तूने इल्जाम लगाया, मैंने चुपके से थैली पकड़ के पानी में फेंक दी, क्योंकि आज अगर ये अशरफियां मेरे पास निकलती कोई ना मानता कि ये मेरी है, तेरी होती, और मैं नबी की हदीस का काम करता हूं, मैं अल्लाह के दीन का काम करता हूं, एक दफा मेरे नाम पर ये लग जाता चोरी का ठप्पा, लोगों ने कल मुझसे ये इल्म नहीं लेना था। है कोई इतना पाक दामन तो बाहर आए। याद रखिए ये आसान काम नहीं है। आप दुनिया का 10 काम करें ना, लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपकी छुपी हुई खूबियों की भी तारीफें करेंगे, अंदर से आप बड़ी अच्छी हैं, वैसे अंदर से आप बड़ी मुखलिस हैं, बाहर से वैसे कोई बात नहीं, अंदर से तो आप हैं बड़ी, नहीं एक अलग बात है कपड़े भी ना पूरे पहने, बट जिस वक्त आपने अल्लाह के दीन का नाम पकड़ना है ना, लोगों ने आपका अंदर से पोस्टमार्टम करना है, हड्डियों का गूदा भी जाके टेस्ट कराना है कि उसके अंदर इखलास है कि निफाक है कि पैसा है कि माल है, लोगों ने आपको इस तरह खंगाल देना है कि जैसे कि आप कहें कि आपका अंदर बाहर ना अलग हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के रास्तों में निकलें, अपने दामन को हत्तुल वसा पाक रखें। पिछले सपारे में आपने पढ़ा नबी सल्लम पे इल्जाम लगा रहे हैं लोग माल की बांट के बारे में, तो ये होगा, लोग पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, जिसका दिल चाहे कमेंट कर दे, जिसका दिल चाहे बात कर दे, तो इमाम बुखारी रहमहुल्ला, और इसी तरह से आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये यहाँ अमल हम सब के लिए। आज दीन का काम करने वाला जितना ज्यादा अपने आप को केयरफुल करे, जितना ज्यादा अपने इस मिशन की और अपने इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करेगा, उतना दीन आम होगा। आज क्यों मौलवियों के नाम पे लतीफे हैं, आज क्यों चंदा बदनाम है, आज डोनेशनें क्यों बदनाम है, आज मस्जिदों की फलां पैसा लेके भाग गया, उधर क्या निकला, क्यों? क्योंकि हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं होती, और नीयतें ठीक होती हैं, काम करने का तरीका ठीक नहीं होता। अभी अगले पारे में इसमें मजीद गाइडलाइन मिलेगी थोड़ी सी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खिराजे तहसीन पेश किया जा रहा है कि यूसुफ नहीं निकले। अब क्या हुआ, बादशाह को फिक्र लग गई क्या बात है भाई, ये क्या हुआ? वही काम जो होना था लेकिन ऑनरेबली हुआ। बादशाह ने रिसर्च करवाई, अब क्या हुआ? अब औरतें सारी बादशाह के दरबार में। अब जरा समंदर देखिए, ये वक्त जिंदगी में आते हैं, सबर, रजा और एहसान के बाद। ये सब कुछ होना था, 7 साल बाद हुआ। अगर अजीज़े मिसर जो खुद अपनी बीवी और उन औरतों के करतूत से आगाह था, उस दिन ये काम कर लेता जो अब होने लगा अगली आयतों में, तो यूसुफ की इतनी बेगुनाही साबित नहीं हो, पब्लिसाइज नहीं होनी थी, खबर नहीं जानी थी नेट पे। वो घर की बात किसी एक किटी कैटी पार्टी के अंदर ही बात खत्म होनी। अल्लाह ने यूसुफ को एक बिग एक्सपोजर देना था बेगुनाही का। अब बादशाह का दरबार है और औरतें खड़ी हैं, सुनिएगा जरा। इस पर बादशाह ने इन औरतों से दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या तजुर्बा है इस वक्त का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी? सबने यक जुबान होकर कहा, हाशा लिल्ला, हमने तो इसमें बदी का शायबा तक नहीं पाया। ये कौन बोल रहा है? मुखालिफ बोल रहा है, दुश्मन बोल रहा है। और असल तारीफ वही होती है जो आपका मुखालिफ आपकी करे। अजीज की बीवी बोल उठी, अब हक खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने इसको फिसलाने की कोशिश की थी, बेशक वो बिल्कुल सच है। अगर उस दौर में अखबार होता तो फर्स्ट लेडी का ये जुमला शह सुर्खी बना होता। ये है यूसुफ की बेगुनाही। या फिर कहूंगी, थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, हर वक्त अपनी सफाई पेश किया करें, थोड़ा सा सब्र कीजिए, वल्लाही हालात वाकयात और लोग बोलेंगे कि आप सच्ची हैं और दूसरी बात झूठी थी। हम में सब्र, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें हिदायत दे। पांव के नीचे ऐसे लगता है कोयला रखा गया, अगर कोई हमारे पे बात तो करे, तड़प जाते हैं, बेचैन होते हैं, फिर कहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। नहीं, यूसुफ का 7 साल का सब्र। वहां अगर ये अजीज़े मिस्र की बीवी ये जुमला बोलती, वो चार छह सहेलियां और शौहर सुनता। आज कौन सुन रहा है? पूरा मीडिया सुन रहा है कि मैं थी जिसने उसको रिझाने की कोशिश की और बिल्कुल वो सच्चा है। ये है बेगुनाही साबित करने का और कराने का तरीका। यूसुफ ने कहा, इससे मेरी गरज ये थी। किससे? यानी ये सारा केस मैंने क्यों खुलवाया? क्योंकि अजीज ये जान ले कि मैंने दर पर्दा इसकी खयानत नहीं की, और ये कि जो खयानत करते हैं इनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पे नहीं लगाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बात को साबित करवा दिया। यहाँ पे आप देखिए कि पारा पूरा हुआ। अब अगला जुमला यूसुफ ही का है, कुछ कहते हैं अजीज़े मिस्र की बीवी का है, किसी का भी हो, जुमला बड़ा सच्चा है और इसी पे हमारे 13वें पूरे पारे का थीम होगा। यहाँ तक बात वाज़े है। चंद सेकंड, 5-6 सेकंड लीजिए, गौर कीजिए, बल्कि आप आइए हम अगली चंद आयतों की तिलावत करते हैं और मुहासबा करें। कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना कहे, सिर्फ खुद से सवाल और खुद से जवाब कि यूसुफ की जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आए, अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात मेरे साथ होते तो मेरा रद्द अमल क्या होता।